एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पर्दे के पीछे से चलाता है, जिसके बिना शायद आधुनिक जीवन संभव ही ना हो।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की, और इस सफर में हमारे गाइड होंगे डेविड मोयरवुड, जिनकी दो कमाल की किताबों को हम खंगालेंगे।
अच्छा,
एक है उनकी गहरी पड़ताल सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम्स सस्टेनेबिलिटी एंड सोसाइटी, और दूसरी है इसी विषय पर एक छोटी लेकिन काफी सारगर्भित पेशकश सिविल इंजीनियरिंग अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
और ये विषय आज इतना जरूरी क्यों है? मतलब जरा सोचिए, हमारे आसपास जो कुछ भी है, सड़कें, पुल, पानी की पाइपलाइन, बिजली के खंबे, हमारी इमारतें,
हाँ सब कुछ,
ये सब सिविल इंजीनियरिंग की ही बदौलत है। आज जब हम जलवायु परिवर्तन, बढ़ते शहर और टिकाऊपन यानी सस्टेनेबिलिटी जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो ये समझना और भी अहम हो जाता है कि ये क्षेत्र काम कैसे करता है और इसकी असली भूमिका और लक्ष्य क्या हैं।
सही कहा। वुड हमें यही समझाते हैं कि ये सिर्फ ढांचे खड़े करने का नाम नहीं, बल्कि विज्ञान, समाज और प्रकृति के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कला है।
इसका मकसद हमेशा से मानव जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाना रहा है, लेकिन ये मकसद वक्त के साथ कैसे बदला है, ये जानना दिलचस्प होगा।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा।
हाँ, सबसे पहले डेविड मोयरवुड को थोड़ा जान लें। ये सिर्फ किताबी विद्वान नहीं है।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा असल में सिविल इंजीनियरिंग करते हुए बिताया है।
अच्छा,
ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के एमेरिटस प्रोफेसर हैं।
अच्छा,
और पहले ग्लासगो और कैम्ब्रिज जैसे नामी संस्थानों में भी पढ़ा चुके हैं।
तो मतलब फील्ड का अनुभव भी है और अकेडमिक ज्ञान भी।
हाँ, और इनकी खासियत है जियोटेक्निक्स यानी जमीन और मिट्टी का विज्ञान। सोचिए, हर इमारत, हर पुल की नींव
इसी पर टिकी होती है।
हाँ, लेकिन वुड्स की सबसे बड़ी खूबी शायद ये है कि वो मुश्किल से मुश्किल तकनीकी बातों को भी बड़े आसान और दिलचस्प तरीके से समझा देते हैं।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ, वो एक तरह से अनुवादक का काम करते हैं, इंजीनियरिंग की जटिल दुनिया को हम जैसे आम लोगों के लिए खोल देते हैं।
हाँ, और उन्होंने दशकों तक थ्योरी और प्रैक्टिकल काम के बीच एक पुल बनाया है। उनका नजरिया सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं, वो पर्यावरण, समाज की जरूरतें और सिस्टम थिंकिंग।
हाँ,
यानी ये समझना कि कैसे सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं, इन सबको साथ लेकर चलते हैं। उनके लिए इंजीनियरिंग सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि समाज सेवा है।
सही,
जिसका एक स्पष्ट लक्ष्य है लोगों का भला करना।
बिल्कुल, वुड की ये किताबें सिविल इंजीनियरिंग की एक पूरी तस्वीर पेश करती हैं। उनका एक मुख्य तर्क यह है कि सिविल इंजीनियरिंग वो अदृश्य धागा है जिसने आधुनिक सभ्यता को बुन रखा है।
अदृश्य धागा।
हाँ, ये सिर्फ पुल या सड़कें बनाना नहीं बल्कि विज्ञान के सिद्धांतों को असल दुनिया के ढांचों में बदलना है जो हमारे जीने का ढंग तय करते हैं। ये इसका बुनियादी मकसद है कह सकते हैं।
वो इसे प्रकृति और इंसानी समाज के बीच लगातार चलने वाली एक बातचीत की तरह देखते हैं, एक ऐसा मैदान जहां तकनीकी महारत के साथ साथ पर्यावरण की चिंता, पैसे की कमी और समाज के प्रति जिम्मेदारी का संतुलन साधना पड़ता है।
हाँ, और यही संतुलन साधना ये आज इंजीनियर की सबसे बड़ी भूमिका बन गया है शायद।
बिल्कुल,
ये किताबें हमें बुनियादी बातों से शुरू करवाती हैं, जैसे कोई चीज दबाव या खिंचाव में कैसे बर्ताव करती है, और फिर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग के लिए जरूरी पेचीदा सिस्टम थिंकिंग तक ले जाती हैं। वुड इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इंजीनियरिंग का असली लक्ष्य ऐसे समुदाय बनाना है जो रहने लायक हों, टिकाऊ हों और मुश्किल हालात जैसे बाढ़ या भूकंप,
हाँ, उनका सामना कर सकें, लचीले हों।
हाँ, लचीले हों। वो सिर्फ क्या और कैसे पर नहीं रुकते बल्कि क्यों पूछते हैं, इंजीनियरिंग आखिर किस लिए है, इसका असली मकसद क्या है।
ये बहुत जरूरी सवाल है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। वुड समझाते हैं कि इंजीनियरिंग सोच आखिर है क्या। ये सिर्फ साइंस के फॉर्मूले लगाना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल दुनिया की मुश्किलों जैसे ग्रेविटी है, बजट की कमी है, मौसम का मिजाज है, और हाँ, इंसानी बर्ताव भी।
हाँ, इंसानी बर्ताव।
हाँ,
इन सब के बीच रास्ता निकालना है, यही इंजीनियर की असली भूमिका शुरू होती है।
हाँ, और इसमें एक कमाल की काबिलियत चाहिए होती है, किसी बड़ी उलझी हुई समस्या को छोटे समझने लायक टुकड़ों में बांटना।
हाँ, ब्रेक डाउन करना।
लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना कि ये सारे टुकड़े मिलकर एक पूरे सिस्टम की तरह कैसे काम कर रहे हैं। ये नजरिया ही इंजीनियर के लक्ष्य को बड़ा बनाता है, सिर्फ पुर्जा नहीं पूरी मशीन ठीक करनी है।
सही, और वो जो हम स्कूल कॉलेज में भारी भरकम नाम सुनते हैं, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, मटेरियल साइंस, वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। वुड कहते हैं कि ये तो दुनिया को समझने और उसे बेहतर बनाने के औजार हैं।
बिल्कुल, यहीं से इंजीनियर अपनी भूमिका निभाना शुरू करता है।
अब आते हैं सामग्री यानी मटेरियल्स पर। कॉन्क्रीट, स्टील, लकड़ी, आजकल तो नए नए कंपोजिट मटीरियल भी आ गए हैं।
हाँ, बहुत तरह के हैं। वुड बताते हैं कि हर मटेरियल की अपनी खासियत होती है। कोई खिंचाव यानी टेंशन अच्छा झेलता है, जैसे पुल के मोटे तार, तो कोई दबाव यानी कंप्रेशन में मजबूत रहता है, जैसे किसी इमारत के कॉलम, और कुछ मरोड़ या काटने वाली ताकतों यानी शियर का सामना करते हैं।
लेकिन वुड एक बहुत जरूरी बात उठाते हैं। पहले इंजीनियर शायद सिर्फ ये देखते थे कि मटेरियल कितना मजबूत है, सस्ता है और आसानी से मिल जाता है, पर अब
आप कहानी बदल गई है।
हाँ, अब ये सोचना पड़ता है कि इस मटेरियल को बनाने में कितनी ऊर्जा खर्च हुई, जिसे एम्बॉडीड एनर्जी कहते हैं।
हाँ, एम्बॉडीड एनर्जी।
और इसका पूरा जीवन चक्र कैसा होगा, लाइफ साइकिल असेसमेंट, क्या इसे बाद में रिसाइकिल कर सकते हैं?
हाँ,
ये सवाल अब इंजीनियरिंग डिजाइन के केंद्र में आ रहे हैं और ये इंजीनियर की बदलती भूमिका और जिम्मेदारी को दिखाता है।
सही है, इसे सीधे जुड़ा है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, यानी ये बड़े बड़े ढांचे आखिर खड़े कैसे रहते हैं।
हाँ, ये बड़ा सवाल है। वुड बताते हैं कि ये सब कुछ लोड पाथ, स्टेबिलिटी और रिडंडेंसी जैसी चीजों पर निर्भर करता है।
लोड पाथ, ये सुनने में भारी लगता है पर है बहुत सीधा सा, है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे हम कंधों पर बैग उठाते हैं तो वजन कंधों से कमर फिर पैरों से जमीन तक जाता है, है ना? इमारतों में भी बिल्कुल ऐसे ही वजन या लोड अपना रास्ता ढूंढता है, सबसे मजबूत हिस्सों से होते हुए नींव तक पहुंचने का। इसी रास्ते को लोड पाथ कहते हैं।
अच्छा, और स्थिरता मतलब ढांचा मजबूती से खड़ा रहे, गिरे नहीं।
हाँ, और रिडंडेंसी का मतलब है एक तरह का बैकअप प्लान।
बैकअप कैसे?
मतलब अगर किसी वजह से ढांचे का एक हिस्सा फेल हो जाए तो क्या कोई दूसरा रास्ता है जिससे लोड संभाल जाए और ढांचा एकदम से ढह ना जाए। ये सब सोचना इंजीनियर के लक्ष्य का हिस्सा है, सुरक्षा सबसे पहले।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। सोचिए, एक साधारण सी बीम से लेकर हजारों मीटर लंबे सस्पेंशन ब्रिज तक।
हाँ, वो दिलचस्प उदाहरण देते हैं, जैसे रोम के बने आर्च, मेहराब, जो सिर्फ दबाव झेलने के लिए डिजाइन किए गए थे।
अच्छा,
या पेरिस का एफिल टावर, जो लोहे के ट्रस, जालीदार ढांचा आपका कमाल है, या फिर हमारे सस्पेंशन ब्रिज जिनमें स्टील की मोटी केबल तनाव झेलकर पूरे ब्रिज को थामे रहती हैं।
और सबसे जरूरी, वुड कहते हैं, इंजीनियर को ये समझना होता है कि कोई ढांचा किन तरीकों से नाकाम हो सकता है, फेलियर मोड्स।
बिल्कुल, क्योंकि जब आप ये जानते हैं कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है तभी आप उससे बचने का उपाय कर सकते हैं, यानी पर्याप्त सुरक्षा मार्जिन रख सकते हैं। ये जोखिम को समझना और संभालना इंजीनियर की एक अहम भूमिका है।
और क्या गलतियों से सीखना इंजीनियरिंग का हिस्सा नहीं है? टैकोमा नैरोज ब्रिज का वो मशहूर वीडियो।
हाँ हाँ, वो तो कौन भूल सकता है,
कैसे वो हवा में किसी रिबन की तरह लहराकर टूट गया। वुड कहते हैं कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था बल्कि एक अनियोजित प्रयोग था।
हाँ, अनियोजित प्रयोग जिसने इंजीनियरों को सिखाया कि हवा की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
सही, असफलताओं से सीखना ये भी इंजीनियर के काम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये उसके लक्ष्य बेहतर और सुरक्षित डिजाइन को पाने में मदद करता है।
बिल्कुल, अब आते हैं जमीन पर, यानी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग।
वाओ,
इसे मजाक में धरती माता का विज्ञान कहते हैं। भाई, हर चीज जमीन पर ही तो टिकनी है, तो जमीन की फितरत, चाहे वो नर्म मिट्टी हो, सख्त चट्टान हो या कुछ और, ये हर डिजाइन पर गहरा असर डालती है।
बिल्कुल, इंजीनियर को ये पता करना होता है कि मिट्टी कितनी मजबूत है, कितना वजन सहन कर सकती है, बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं इसे।
हाँ, बेयरिंग कैपेसिटी, पानी के असर से कितना दबेगी या फूलेगी। लेकिन वुड ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ विज्ञान नहीं, थोड़ी कला भी है।
कला कैसे?
क्योंकि जमीन कई बार बहुत अप्रत्याशित होती है, आप कितनी भी जांच कर लें कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है।
अच्छा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण
पीसा की झुके हुई मीनार। सदियों से लोग हैरान हैं, ये असल में जमीन को ठीक से ना समझने का नतीजा था। एक तरफ की मिट्टी ज्यादा दब गई और मीनार झुक गई, और फिर सदियों तक उसे गिरने से बचाने और सीधा करने की कोशिशें चलती रहीं।
कमाल है,
ये दिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम करना इंजीनियर की भूमिका का कितना जटिल लेकिन जरूरी हिस्सा है।
इसी से जुड़ा है कि किसी इमारत की नींव कैसी बनेगी, पहाड़ी इलाकों में ढलानें स्थिर कैसे रहेंगी, या शहरों के नीचे सुरंगें कैसे बनेंगी।
हाँ, ये सब जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का कमाल है।
अब जरा पानी की बात करें, जल संसाधन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेस। पानी जिंदगी है लेकिन आफत भी बन सकता है।
बिल्कुल, तो इसका प्रबंधन एक दोहरी चुनौती है, पीने और खेतों के लिए सप्लाई करना और साथ ही बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाना।
इसके पीछे हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलॉजी का विज्ञान काम करता है।
हाँ, यानी पानी बहता कैसे है, उसकी ताकत कितनी होती है, बारिश कब और कितनी होगी, इसका अंदाजा लगाना।
वो हमें इतिहास में ले जाते हैं, रोम के लोग कैसे पहाड़ों से मीलों दूर शहरों तक पानी लाने के लिए एक्वेडक्स बनाते थे।
हाँ, अद्भुत। या लंदन में जोसेफ बाजलगेट ने कैसे एक विशाल सीवर सिस्टम बनाया जिसने हैजा जैसी बीमारियों पर काबू पाया।
अरे हाँ।
या फिर बड़े बड़े बांध जैसे अमेरिका का हूवर डैम या लंदन शहर को समुद्र की ऊंची लहरों से बचाने वाला थेम्स बैरियर। ये सब इस बात के उदाहरण हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का लक्ष्य समाज की बड़ी समस्याओं का हल निकालना रहा है।
और आज पानी को लेकर चुनौतियां और भी बढ़ गई हैं। कहीं पानी की भयानक कमी है तो कहीं जलवायु परिवर्तन की वजह से अचानक भयंकर बाढ़ आ जाती है।
सही बात है। टिकाऊ जल प्रबंधन यानी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट अब सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। ये आज के इंजीनियर की एक बड़ी जिम्मेदारी है।
अब चलते हैं परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की ओर। इसका मकसद है लोगों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित और तेजी से पहुंचाना।
लेकिन वुड कहते हैं कि ये सिर्फ सड़कें या रेल पटरियां बिछाना नहीं है, ये एक पूरे सिस्टम को डिजाइन करने जैसा है।
अच्छा, कैसे?
मतलब इसमें हाईवे कैसे बनेंगे, शहरों में ट्रैफिक जाम कैसे कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, मेट्रो कैसे बेहतर होगा, हवाई अड्डे कैसे काम करेंगे, ये सब शामिल है।
हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है।
हाँ, और यहाँ भी वही संतुलन साधना पड़ता है। लोगों की आने जाने की जरूरतें पूरी हों लेकिन पर्यावरण और समाज पर बुरा असर ना पड़े।
आजकल इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS और टिकाऊ मोबिलिटी सस्टेनेबल मोबिलिटी जैसे नए विचार।
हाँ, ये सब इंजीनियर की भूमिका को और जटिल और महत्वपूर्ण बना रहे हैं।
और पर्यावरण इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वुड जोर देकर कहते हैं कि ये अब कोई अलग थलग शाखा नहीं रही।
नहीं, अब ये सिविल इंजीनियरिंग का ही एक अंदरूनी हिस्सा बन चुकी है।
हवा और पानी को साफ रखना, कचरे का निपटारा करना, पुरानी औद्योगिक जगहों को साफ करना, ये सब अब हर बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सही कहा, अब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इंजीनियर को सोचना पड़ता है, हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे प्रदूषण तो नहीं फैलेगा, क्या यहाँ कोई दुर्लभ पेड़ पौधे या जानवर तो नहीं रहते।
जी हाँ, ये पर्यावरण के प्रति जागरूकता अब इंजीनियर की बुनियादी जिम्मेदारी बन गई है।
ये दिखाता है कि इंजीनियर की भूमिका सिर्फ निर्माता की नहीं बल्कि इस ग्रह के एक रक्षक की भी है, कह सकते हैं।
और आखिर में वुड बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ प्लानिंग की। यहाँ वो सिस्टम थिंकिंग पर वापस आते हैं।
हाँ, उनका कहना है कि हमें अलग अलग ढांचों, पुल, सड़क, बिजली लाइन, पानी सप्लाई को अकेले अकेले नहीं देखना चाहिए। ये सब मिलकर एक बड़ा जटिल सिस्टम बनाते हैं जिसे कोई शहर या पूरा इलाका।
और इस सिस्टम की सोच क्यों जरूरी है?
क्योंकि एक हिस्से में आए गड़बड़ी पूरे नेटवर्क को ठप कर सकती है। सोचिए, अगर शहर में बिजली चली जाए तो क्या होगा?
अरे सब रुक जाएगा, ट्रैफिक सिग्नल बंद, पानी की सप्लाई रुक सकती है, अस्पतालों में दिक्कत। हाँ, वुड एक हवाई अड्डे का उदाहरण देते हैं। वो सिर्फ रनवे नहीं है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, बैगेज हैंडलिंग, जमीनी यातायात, सुरक्षा, दुकानें, इन सबका एक मिला जुला सिस्टम है।
सही, यहीं पर लचीलापन, रिजिलियंस और रिडंडेंसी जैसे विचार काम आते हैं।
बिल्कुल, लचीलापन मतलब अगर कोई झटका लगे जैसे तूफान या बिजली जाना तो सिस्टम पूरी तरह ठप ना हो जाए बल्कि किसी तरह काम करता रहे या जल्दी से वापस खड़ा हो जाए।
और रिडंडेंसी मतलब बैकअप का इंतजाम रखना।
हाँ, जैसे एक बिजली लाइन फेल हो तो दूसरी से काम चल जाए। एक शहर तो, जैसा वुड कहते हैं, सिस्टम्स का सिस्टम है। इन जटिल सिस्टम्स को समझना और उन्हें मजबूत बनाना ये आज के इंजीनियर का एक बड़ा लक्ष्य है।
वुड भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर भी बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन?
हाँ, इसके कारण हमें अपने डिजाइन बदलने पड़ रहे हैं। नई तकनीकें जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नए स्मार्ट मटेरियल इंजीनियरिंग का चेहरा बदल रहे हैं।
और दुनिया भर में लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, अर्बनाइजेशन।
हाँ, और हमारे पुराने हो चुके पुल, सड़कें, पाइपलाइनें उनकी मरम्मत और देखभाल भी एक बड़ी चुनौती है।
तो इन सब के बीच सिविल इंजीनियर की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम और चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।
हाँ बिल्कुल। तो डेविड मोयरवुड की इन सारी बातों से कुछ बड़े संदेश उभर कर सामने आते हैं, है ना? पहला और शायद सबसे जरूरी है सिस्टम थिंकिंग। आज के इंजीनियर को यह समझना ही होगा कि सब कुछ आपस में जुड़ा है। पुल बनाने वाला ये नहीं सोच सकता कि उसका काम सिर्फ पुल तक सीमित है। उसे सोचना होगा कि ये पुल शहर के ट्रैफिक सिस्टम पर क्या असर डालेगा, इसके बनने से आसपास के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
हाँ, वो पूरी तस्वीर देखना, ये इंजीनियर की नई भूमिका है।
दूसरा बड़ा संदेश है टिकाऊपन, यानी सस्टेनेबिलिटी। वुड साफ कहते हैं कि ये अब कोई फैशन या विकल्प नहीं है।
नहीं,
ये इंजीनियरिंग का मूल सिद्धांत बन चुका है। हमें सिर्फ आज की जरूरतें नहीं देखनी, बल्कि ये सोचना है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़कर जा रहे हैं।
मटेरियल कैसे चुने, ऊर्जा कैसे बचाएं, पर्यावरण को नुकसान कम से कम कैसे हो, ये सब सोचना इंजीनियर के नैतिक लक्ष्य का हिस्सा है।
और भारत जैसे देश में जहां संसाधनों पर दबाव है और पर्यावरण की चुनौतियां ज्यादा हैं, ये सोच और भी जरूरी हो जाती है।
बिल्कुल। तीसरा ये कि सिविल इंजीनियरिंग का काम अब सिर्फ तकनीकी नहीं रहा, इसमें गहरी सामाजिक जिम्मेदारी जुड़ गई है।
हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है।
इंजीनियरों को अब सोचना पड़ता है कि उनके प्रोजेक्ट का समाज के हर तबके पर क्या असर पड़ेगा, क्या ये सबके लिए फायदेमंद है,
क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा,
क्या ये दिव्यांगों या बुजुर्गों के लिए भी सुलभ एक्सेसिबल है।
हाँ।
हमारे देश में अक्सर बड़े प्रोजेक्ट से लोगों का विस्थापन होता है।
हाँ।
उनकी जिंदगी बदल जाती है। इन सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देना अब इंजीनियर की भूमिका का अभिन्न अंग है।
चौथा है रिस्क, अनिश्चितता और लचीलापन।
रिस्क, अनसर्टिनिटी एंड रेजिलियंस।
हाँ, वुड हमें याद दिलाते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, हम सब कुछ पहले से नहीं जान सकते।
सही बात है।
कभी भी कोई भयंकर बाढ़, भूकंप या कोई और अनहोनी हो सकती है, इसलिए हमें ऐसे ढांचे बनाने होंगे जो सिर्फ सामान्य हालात के लिए नहीं बल्कि ऐसे अप्रत्याशित झटकों को भी झेल सकें।
सिर्फ सबसे अच्छा ऑप्टिमल डिजाइन बनाना काफी नहीं, हमें मजबूत और लचीला डिजाइन बनाना होगा। मुंबई की बाढ़ या पहाड़ों में भूस्खलन हमें बार बार इसकी याद दिलाते हैं।
हाँ, इस अनिश्चितता का प्रबंधन करना इंजीनियर का एक बड़ा लक्ष्य है।
और पांचवा, असफलता से सीखना। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। टेकोमा ब्रिज का गिरना या पीसा मीनार का झुकना, इन्हें सिर्फ गलतियों की तरह नहीं देखना चाहिए। वुड इन्हें अनियोजित प्रयोग कहते हैं, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला।
अच्छा,
इन्हीं असफलताओं से सबक लेकर आज हम ज्यादा सुरक्षित और बेहतर डिजाइन बना पाते हैं।
ये निरंतर सीखते रहना और सुधार करते रहना भी इंजीनियर की भूमिका का हिस्सा है। वुड की किताबों में कुछ ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसे वो कहते हैं कि इंजीनियरिंग का मतलब हर जोखिम से बचना नहीं बल्कि जोखिम को इतनी अच्छी तरह समझना है कि अनिश्चितता के स्वीकार्य स्तरों के बारे में सोच समझकर फैसला लिया जा सके।
हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। मतलब जीरो रिस्क जैसा कुछ नहीं होता। असल दुनिया में हमेशा कुछ न कुछ अनिश्चितता रहेगी। इंजीनियर का काम है उसे समझना और तय करना कि कितना जोखिम उठाया जा सकता है। ये उनके निर्णय लेने की भूमिका को उजागर करता है।
हाँ, और एक और बात जो मुझे बहुत पसंद आई, सबसे अच्छे इंजीनियरिंग समाधान अक्सर अदृश्य होते हैं। वे इतने अच्छे से काम करते हैं कि लोग उन्हें मानकर चलते हैं और भूल जाते हैं कि उनके लिए कितनी सावधानी से डिजाइन और लगातार रख रखाव की जरूरत पड़ी होगी।
बिल्कुल, सोचिए हमारे घरों में नल खोलते ही साफ पानी आ जाता है।
हाँ, हम इस पे ध्यान भी नहीं देते।
ये उन अनगिनत इंजीनियरों के चुपचाप किए गए काम को सलाम है जिनका लक्ष्य हमारी जिंदगी को आसान बनाना है।
स्थिरता पर उनका एक और कथन है, इंजीनियरिंग में स्थिरता का मतलब सिर्फ आज की जरूरतों के लिए डिजाइन करना नहीं बल्कि उस दुनिया के लिए डिजाइन करना है जिसे हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ना चाहते हैं।
सीधी सी बात है, पर इंजीनियरिंग के मकसद को कितना बड़ा बना देती है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी की बात है।
बिल्कुल। और ये कि आधुनिक इंजीनियरिंग चुनौतियों के लिए हमें वैज्ञानिक और कलाकार दोनों की तरह सोचना होगा। कठोर विश्लेषण करते हुए ऐसे रचनात्मक समाधानों की कल्पना करना जो पहले आजमाए नहीं गए हैं। वाह।
हाँ, मतलब इंजीनियरिंग सिर्फ नंबरों और फॉर्मूलों का खेल नहीं, इसमें कल्पना और रचनात्मकता की भी उतनी ही जरूरत है। ये दिखाता है कि इंजीनियर की भूमिका कितनी बहुआयामी है।
इन सब बातों का मतलब सिर्फ इंजीनियरों के लिए नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
हम सब जो इन सड़कों, पुलों, इमारतों का इस्तेमाल करते हैं, अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगली बार जब कोई नया फ्लाईओवर या मेट्रो लाइन बने तो हम सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि चलो ट्रैफिक कम होगा,
हाँ, बल्कि ये भी सोच सकते हैं कि इसके पीछे कितनी इंजीनियरिंग लगी होगी, क्या चुनौतियां आई होंगी, पर्यावरण पर क्या असर हुआ होगा।
बिल्कुल, ये हमें बेहतर और जागरूक नागरिक बनाता है। जब सरकार किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पैसा खर्च करने की बात करती है तो हम ज्यादा समझदारी से अपनी राय रख सकते हैं।
सही है, हम समझ सकते हैं कि पुराने पुलों या इमारतों की मरम्मत क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा से जुड़ा है, जो इंजीनियरिंग का एक बुनियादी लक्ष्य है।
और सिस्टम थिंकिंग का सिद्धांत, ये तो हम अपनी नौकरी में, अपने घर में, कहीं भी लागू कर सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, ये समझना कि कैसे अलग अलग चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दूसरे पर असर डालती हैं, ये हमें बड़ी तस्वीर देखने और बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, जो इंजीनियरिंग का भी एक लक्ष्य है।
हाँ, और जोखिम और अनिश्चितता वाली बात भी, जिंदगी में भी तो ऐसा ही होता है।
हाँ होता है, कोई भी फैसला, चाहे वो नौकरी बदलना हो या कहीं पैसा लगाना हो, पूरी तरह रिस्क फ्री नहीं होता।
नहीं होता।
वुड की बातें हमें सिखाती हैं कि जरूरी ये नहीं कि हम रिस्क से भागें, बल्कि ये कि हम उसे समझें, उसका अंदाजा लगाएं और फिर सोच समझकर कदम उठाएं, ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छा इंजीनियर करता है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि सिविल इंजीनियरिंग का क्षेत्र कैसे सिर्फ तकनीक से आगे बढ़कर सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की ओर बढ़ा है। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील का काम नहीं रहा, ये सीधे सीधे समाज की सेवा से जुड़ गया है। इसकी भूमिका और लक्ष्य कितने फैल गए हैं।
और मेरे लिए वो विचार कि सबसे कामयाब इंजीनियरिंग अक्सर नजर ही नहीं आती।
हाँ,
ये हमें उन हजारों लाखों गुमनाम इंजीनियरों की मेहनत की कद्र करना सिखाता है जो हमारी दुनिया को चलाए रखते हैं। और हाँ, वुड जिस तरह स्थिरता और भविष्य के लिए डिजाइन करने की जरूरत पर जोर देते हैं, वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये साफ करता है कि इंजीनियरिंग का मकसद अब सिर्फ बनाना नहीं बल्कि बचाना भी है।
सच में, सिविल इंजीनियरिंग हमारी सभ्यता की नींव है और इसकी बदलती भूमिका और बढ़ते लक्ष्यों को समझना हमें अपने आसपास की दुनिया और अपने भविष्य के बारे में ज्यादा जागरूक बनाता है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य का इंजीनियर समाज के लिए और क्या क्या कर पाएगा?
ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।